SBS हिंदी। आदित्य जी नमस्कार।
नमस्ते
आदित्य जी, आपको आपकी फिल्म की सफलता की बहुत बहुत मुबारक हो।
थैंक यू सो मच।
तो आपकी क्या उम्मीद थी जब आपने ये फिल्म बनाई थी, इतनी सफलता की आपको उम्मीद थी?
इतनी सफलता की नहीं थी, डेफिनेटली नॉट। हमें ये पता था कि बिकॉज हम ये फिल्म इंडियन आर्मी के लिए बना रहे हैं, उनको डेडिकेट कर रहे हैं, तो हमने पूरी टीम ने पूरी इस फिल्म में पूरी जान लगा दी थी। तो हमें ये पता था कि बिकॉज ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है, पूरी कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है, दैट वी कैन नॉट टेक इट ईजी, वी हैव टू गिव आवर 100%। तो उस लिहाज से हमने हमेशा ये सोचा था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, बिकॉज इंटेंशंस करेक्ट थी, मेहनत करी थी। बट हमने ये कभी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा अप्रिसिएशन, इतना ज्यादा मोर देन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इट्स द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम पीपल। इट वॉज सो ओवरवेलमिंग कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई हमारे पास हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, आर्मी ऑफिसर्स उनकी फैमिलीज, मतलब इतने खुश और इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग मिली हमारे को इस फिल्म की वजह से, दैट इट वॉज सो ओवरवेलमिंग एंड हार्ट वार्मिंग। मतलब वी ओनली हैव ग्रैटिट्यूड इन आवर हार्ट्स, इतनी खुशी हमें शायद ही कोई और फिल्म दे पाती।
आपने शायद ही कोई और फिल्म कही है, जबकि ये अब सभी जान गए हैं कि आपकी जो फिल्म आनी थी उसमें अड़चन आई और इस फिल्म की जैसे वो एक भूमिका बन गई और आपने ये फिल्म लिखी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिल्म थी, तो उत्सुकता तो है कि कैसी रही, कैसा था वो थॉट प्रोसेस और क्या लगा था कि यही फिल्म होनी चाहिए?
मैं इससे पहले एक फिल्म कर रहा था राजपा की, जिसमें कटरीना कैफ और फवाद खान थे, तो बिल्कुल शूट पे जाने ही वाले थे कि उरी अटैक हुआ और विद इन फ्यू डेज उरी अटैक होते ही पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया इंडिया में आने से, एंड जहाँ पे मेरा ऑफिस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि किसको रिकास्ट करें, किसको फवाद की जगह पे ले, उतने ही दिनों में, कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक हुई
जी।
अब मैं, मेरा जो बैकग्राउंड है वो, मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैंने कश्मीर में बचपन से ही, जब से पैदा हूँ तब से टेररिज्म के बारे में सुनता आ रहा हूँ, एंड साथ ही साथ मुझे बहुत शौक था आर्मी में घुसने का, खुद फौज में घुसने का।
अच्छा।
तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स थे ये सही, बिकॉज आई अंडरस्टूड टेररिज्म, थोड़ा बहुत समझ में आता था मुझे टेररिज्म ठीक से, जो भी सिचुएशन थी कश्मीर में, साथ में बिकॉज आर्मी में घुसना चाहता था। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए मेरा ध्यान एकदम से रात बाकी से हट गया और मेरा ध्यान इस पे चला गया कि मैं ये जानना चाहता हूँ ये कैसे हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई, मुझे वो कहानी पता करनी, मुझे जानना है। मुझे ये नहीं पता था कि उसके अंदर कहानी होगी नहीं होगी क्या होगा, बट मुझे ये पता था कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन आर्मी दुश्मन के इलाके में गई और उनके सारे टेररिस्टों को मार दिया। तो ये कहीं ना तो कहीं मुझे थोड़ा सा लाइक आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, और जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, एंड इट वाज लिटरली लाइक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, कि आपको एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पे रिसर्च करना है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पे रिसर्च करना
जी।
तो 6 महीने लगे, काफी डिफेंस एनालिस्ट से मिला, काफी आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स से मिला, जर्नलिस्ट से मिला, एंड धीरे धीरे करके कुछ कुछ सुराग मिलते गए। और जब मैंने सुरागों को पिरोया तब मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत ही कमाल की कहानी है, लाइक बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी है
जी।
तो उसके बाद मतलब मेरे दिमाग में कोई ऐसा शक नहीं था, मुझे पता था कि मुझे यही फिल्म करनी है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा, पर इससे बेहतर फिल्म तो हो ही नहीं सकती फॉर अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, और फॉर एनी फिल्म मेकर, मतलब आप अपने देश के लिए फिल्म बना रहे हो, अपनी आर्मी के लिए फिल्म बना रहे हो, तो कहीं ना तो कहीं वो जज्बात जो होते हैं, वो आपके जो डिसीजंस होते हैं वो आपके जज्बातों में जब फॉलो करते हैं तो कई बारी अच्छे ही होते हैं
जी।
तो इसमें मेरा कहीं ना तो कहीं वो थॉट था कि ये एक अच्छी फिल्म बन सकती है
जी। हर सीन पर दिखाई देता है कि कितनी मेहनत गई है। और तो रोनी जी का साथ कैसे मिला एज ए प्रोड्यूसर?
एक्चुअली रॉनी सर के ऑफिस में एक एसोसिएट प्रोड्यूसर है सोनिया कन्वर करके, जो हमारी काफी प्रिय मित्र भी है, तो वो काफी टाइम से मेरे साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहती थी, तो हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे बातें कर रहे थे। तो जब मैंने उरी की स्क्रिप्ट लिखी तो मेरे जो मैनेजर हैं, काफी क्लोज फ्रेंड है मेरे चैतन्य हेगड़े, उन्होंने पढ़ी और उन्होंने बोला कि यार ये फिल्म तो बहुत जल्दी बनानी पड़ेगी, बिकॉज अगर हम नहीं बनाएंगे तो कोई और बना लेगा, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो उन्होंने इमीडिएटली सोनिया को भेजी और सोनिया जी को बोला कि आप प्लीज पढ़िए और जल्द से जल्द जवाब दीजिए, मतलब आज के आज जवाब चाहिए हमारे। तो सोनिया वैसे ही चाहती थी हमारे साथ फिल्म बनाने को, तो उन्होंने पढ़ी स्क्रिप्ट एंड विद इन टू आवर्स शी कॉल्ड अस, शी सेड इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी, मैं रॉनी के साथ शेयर करूंगी, मगर रॉनी यूजुअली 10-15 दिन लेते हैं पढ़ने में, जवाब देने में, पूरे जो उनका फीडबैक होता है उसको एक्यूमुलेट करके जवाब देने में। तो इन्होंने शायद रॉनी को भेजी होगी, एंड रॉनी उस टाइम पर फ्लाइट ले रहे थे वाइजाक के लिए, प्लेन में चढ़ रहे थे, तो उन्होंने वो भेजी स्क्रिप्ट एंड रॉनी को बोला कि कुछ भी हो जाए कोशिश कीजिए, जितना जल्दी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। एंड फॉर्चुनेटली उस दिन शायद फ्लाइट में उनके पास और कुछ करने को था नहीं, तो उन्होंने शायद कुछ पन्ने पढ़ना शुरू किया एंड बाय द टाइम ही लैंडेड ही हैड फिनिश्ड द एंटायर स्क्रीन प्ले एंड ही कॉल्ड अप सोनिया, ही सेड वी आर डूइंग दिस फिल्म। सो जहां मुझे मतलब 2009 में मेरे को अपनी पहली फिल्म बनानी थी, फिर 2011 में बनानी थी, फिर 12 में बनानी थी, फिर 14, फिर 16 में, और मैं बस इंतजार ही करता रहा पूरी जिंदगी, और जब होना था तो वो विद इन फ्यू आवर्स हो गया, जहाँ पे इतने सालों में नहीं हुआ वहां पे जब होना था तो विद इन फ्यू आवर्स।
यानी नियति आपके साथ में थी, क्योंकि कभी आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे तो शायद कहीं आप व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे इस विषय से, और वो विषय इस तरह से आना था आपके सामने, तो इसे तो नियति ही कहेंगे। इतनी खूबसूरत फिल्म आपने बनाई, तो और जहां तक मैं जानती हूं कि फिल्म का बजट बहुत कम था और काफ़ी आपको मुश्किलें भी आई होंगी इसको फिल्माने के लिए, तो सबसे अधिक चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा था इस फिल्म का?
पूरी फिल्म ही काफी चैलेंजिंग थी, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी पूरी फिल्म, बिकॉज़ एक तो हम जितने एक्शन सीक्वेंसेस थे वो सर्बिया में शूट कर रहे थे, तो वहां पे हमारे पास बिल्कुल बजट नहीं था शूटिंग करने का, एक्शन सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ करने के लिए, शूटिंग करने के लिए। तो मेरी जो टीम थी वो बहुत ही कमाल की टीम थी, जो मेरे डीओपी हैं, जो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर हैं, जो कॉस्ट्यूम, बहुत ही कमाल की थी। सो हर सुबह हम मिलते थे शूट से पहले और हम ये डिस्कस करते थे कि पहले ही प्रीएम्प्ट करते थे आज क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी और हमें कैसे उनसे लड़ना है, कैसे उनसे जूझना है और कैसे उनसे अपना काम निकलवाना। तो अगर आप देखेंगे हमने इतने सारे इनोवेटिव तरीके निकाले इस फिल्म को शूट करने के लिए, ताकि हम पैसे बचा सके और फिल्म की लुक में कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिल्म में 5 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस है, स्टार्टिंग विद चंडेल, फिर म्यांमार अटैक, फिर उरी अटैक, फिर B1, फिर B2। अब इनमें काफी शूटिंग होनी थी जो लाइक सड़क पे होनी थी, रात में होनी थी, गलियों में होनी थी, विलेज के अंदर से, जखोटी विलेज के अंदर से जाते हैं, B2 के पास जाते हैं, B1 पे जाते हैं। अब हमें ये पता था कि अगर हम हर सीक्वेंस के लिए अलग अलग लाइटें मंगवाएंगे तो वो तो उतना तो हमारी लाइटों का जितना बजट होगा उतना तो हमारी पूरी फिल्म का बजट नहीं होगा।
बिल्कुल।
तो हमारे जो प्रोडक्शन डिजाइनर थे उन्होंने एक बड़ा कमाल का आइडिया दे दिया कि उन्होंने बोला देखिए जितने भी लोकेशंस हैं उधर स्ट्रीट लैम्प तो होगी बिकॉज हम रिहायशी इलाकों में है, तो उधर स्ट्रीट लैम्प्स होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 12 स्ट्रीट लैम्प्स बनाए परमानेंट, हमारे थे वो 12 स्ट्रीट लैंप्स, और जब भी हमें शूट करना होता था हम वो 12 स्ट्रीट लैंप्स सड़कों पे लगा देते थे, उसी की लाइट से हमने शूट किया।
क्या बात है।
अगर हम B2 में वही 12 स्ट्रीट लैंप्स पे वही उठा के हमने चकोटी विलेज में भी डाले, उसी 12 स्ट्रीट लैंप्स पे शूट किया, वही उठा के हमने उरी अटैक के दौरान वही डाले, तो हर जगह पे हमने सिर्फ वो 12 स्ट्रीट लैंप्स यूज किए और उसी पे शूट किया।
क्या बात है।
दूसरा था कि हमारे हमारे जो एक्शन डायरेक्टर थे वो उनके पास बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं थे उनको उनके लिए असिस्टेंट हायर करने के लिए, तो उनका उनके साथ मैंने डील करी थी जब भी आप एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ कर रहे हैं मैं आपके असिस्टेंट बनूंगा, और जब भी मैं नॉर्मल सीन कर रहा हूँ तब आप मेरे असिस्टेंट बनोगे। तो ये हमने एक डील करी थी, और हमारा एक और डील था कि कोई भी एक्शन सीक्वेंस का कोई भी टेक हम दो बारी नहीं लेंगे, हम एक ही बार लेंगे, हम एक ही चांस मिलेगा। जितना ज्यादा टेक लेते हैं उतना ज्यादा फुटेज लगता है, उतने ज्यादा पैसे लगते हैं। तो हमने बोला कि हम सिर्फ एक ही टेक लेंगे, ये रूल बना दिया हमने। तो हर दिन हम 14-16 घंटे शूट करते थे, फिर हम वापस होटल आते थे, होटल की लॉबी में हम अगले दिन का पूरा एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ करते थे, प्रैक्टिस करते थे, ताकि हम शूट के दौरान 2-3 टेक ना लें। और इमेजिन कीजिए कि रोज हम 20 घंटे मेहनत कर रहे हैं और 2-3 घंटे सोते थे और अगले दिन शूट पे जाके एक्शन सीक्वेंसेस करते थे।
और ये सब एक टेक में हो रहा है,
और सब एक हमारे जितने भी ब्लास्ट हुए थे, हमारे जितने भी गन शॉट हुए, जितने भी हैंड टू हैंड, सारे एक टेक में हुए।
क्या बात है।
तो बिल्कुल जितने भी हमारे तरीके हो सकते थे, जितने भी तरीके हो सकते, जितने भी डिवाइसेस हम यूज कर सकते थे पैसा बचाने के लिए, हमने सारे डिवाइसेस यूज किए। मतलब जितनी भी जितना भी दिमाग लगा सकते थे, हमने सारे सारे तरीके तौर तरीके अपना लिए इस फिल्म में। अब मतलब वो लगता है कि अब तो वो मजा उसी में आता है कि कहाँ से हम अब नेक्स्ट फिल्म जब भी करें, कहाँ से हम एक छोटे या मीडियम बजट की फिल्म को इतना बड़ा फिर से दिखाएं। उसमें ज्यादा मजा आता है क्योंकि उसमें आपको लगता है कि आपने दिमाग इस्तेमाल किया, आपने इंटेलिजेंस इस्तेमाल करी। अभी एक और एग्जांपल हमारा बड़ा सिंपल सा है, हमारे हमारे जो एक्शन सीक्वेंसेस थे, जो ये 5 बड़े एक्शन सीक्वेंसेस थे, हमारे पास स्टंट जो एक्शन करते हैं स्टंट वाले, उनको हायर करने का पैसा नहीं था। हमारे पास सिर्फ उतना ही पैसा था कि हम पूरी फिल्म के लिए हर सीक्वेंस के लिए सिर्फ 9 स्टंट वाले हायर कर सकते थे, जो ब्लास्ट के पास से निकल सकते हैं, जो आग से कूद सकते हैं, तो सिर्फ 9 ही हायर कर सकते थे। और अगर और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% लोगों को नहीं पता चला होगा, हर एक एक्शन सीक्वेंस में एग्जैक्टली वही 9 स्टंट वाले हैं।
कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपकी जो फिल्म का जो एक जो फ्लो था, जो उसका इम्पैक्ट था, उसमें इस बात की यकीन मानिए गुंजाइश ही नहीं थी ये सोचने की।
उन्हीं स्टंट वालों को हम पगड़ी पहना रहे थे, उन्हीं का मुंह कवर कर उन्हीं को दाढ़ी पहना रहे थे, उन्हीं के कपड़े चेंज कर रहे थे, यानी मतलब हमारे जो मेकअप डिजाइनर थे विक्रम दादा, उनकी टीम ने इतनी मेहनत करी, हमारे एक्शन टीम ने इतनी मेहनत, तो प्रोडक्शन टीम ने इतनी मेहनत, हर कोई अपनी जान लगा रहा था, बिकॉज उनको पता था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, इस फिल्म के लिए जान लगाना बनता है।
जी बिल्कुल, इतनी कॉम्प्लेक्स फिल्म थी, इतनी आपको चुनौतियां आई फिल्माने में, उसके लिए इतना आपने, लेकिन कभी कोई सीन ऐसा भी आया होगा जिसको फिल्माने के बाद में आप खुद भी बहुत इमोशनल हो गए होंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, और वो एक्चुअली मेरे जहन में मुझे लगता था मेरा सबसे डिफिकल्ट सीन होगा, बट इट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट सीन ऑफ माय फिल्म, एंड दैट वाज द फ्यूनरल सीन, जिसमें वो एक छोटी बच्ची
और, जी और उसका जो सल्यूट है, जी वो तो सभी की आंखें नम कर गया था, और शायद कहीं अंदर तक झकझोर भी गया सबको कि यही वास्तविकता है, यही वो चीज है। जी जी,
मेरा बस एक ही ग्रीफ था अपने एक्टर्स को, चाहे वो विक्की था या रीवा थी या मानसी थी या स्वरूप जी थी, मेरा सिर्फ एक ही ग्रीफ था उन लोगों को कि दिस सीन हैज टू बी द मोस्ट परफेक्ट सीन इन द फिल्म, बिकॉज यही एक सीन है जिससे जनता को हमारे फौजियों का सैक्रिफाइस, जो वो अपने अपना जो वो बलिदान करते हैं हमारे लिए, वो समझ में आएगा, वो दिखेगा।
और उनके
अगर ये सीन ठीक से नहीं हुआ तो शायद हमारे को वो ऑडियंस को बलिदान शायद रियलाइज नहीं होगा और मेरी फिल्म पूरी फ्लैट हो जाएगी, लाइक वो मेरा फिल्म का जो 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 पूरा सार है वो कहीं ना तो कहीं हल्का पड़ जाएगा। और जो उस बच्ची ने परफॉर्मेंस दी है, मतलब उस बच्ची ने, मुझे अभी भी याद है जो पहला शॉट जब हम पहला टेक ले रहे थे और बच्ची चल के आती है और मैं जो कास्केट था उसके पीछे ही था मॉनिटर पे, एंड जितने भी एक्टर्स थे वो उसके पीछे थे, बच्ची के पीछे खड़े थे, विक्की सब पीछे खड़े थे, पर हमें पता नहीं था, मैंने बस बच्ची के साथ 10 मिनट बात करी थी उससे पहले और उसको पूरा समझाया था कि ये ऐसा है, ऐसा फील करना है आपको, फील करके ये इमोट करना है। और वो बच्ची जैसे ही चल के वो कास्केट तक आई और जब वो उसने वॉर क्राई करी, मैं अभी भी सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि किस तरीके से उसने, जब जिस तरीके से उसने वॉर क्राई करी, पूरा मैदान मतलब रोने को तैयार, हर एक की आंखें नम, हर एक चुप, जिस तरीके से उस बच्ची ने किया, मतलब हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, उसने वो एकदम से वो माहौल बना दिया कि सबको लगा कि ये एक्चुअली दे हैव लॉस्ट समवन ऑफ देयर ओन.
बिल्कुल, यही उस
एवरी पर्सन,
जी यही उस सीन की खासियत थी, क्योंकि एकदम से हम सब जुड़ गए उस पल के साथ में और हम वो महसूस कर सके. और आपका कैमरा विकी को भी और उनके जो मन का भाव है कि वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं खड़े हो सकते, वो तो ये बहुत कुछ बता देता है कि एक सैनिक के जीवन में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको किन किन चीज़ों से जूझना पड़ता है. आदित्य जी, अब आपके ऊपर उम्मीदें बहुत टिक गई हैं क्योंकि आपने एक अलग ही तरह की फिल्म बनाकर और एक अलग ही मुकाम पे उसको पहुंचा दिया है. तो एक तो बहुत बहुत एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक और ढेरों शुभकामनाएं भी, और आपके समय के लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगी.
थैंक यू सो मच.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.
आपके विचार हमें बताएं. SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.